सुखदेव गोस्वामी राधा जी के प्रिय सुख हैं ना, उनके हाथों में लालित और पालित हुए, उनको कृष्ण नाम श्याम नाम पढ़ा रही है, ठीक है, परम सौभाग्य उनका है। किंतु जो परीक्षित महाराज अपनी मैया को कह रहे हो, मैया कृष्ण को अपना बेटा नाती और पोता मत देखना, अपने भाई का लड़का मत समझना, तुम उनको क्या समझना, तुम उनको अपना गोपियों जैसा प्राण बल्लभ समझ करके उनकी उपासना। मैया को ये कोई कहेगा ऐसी बात? तो ये बतलाइए तो कैसे थे, और ये भी प्राण बल्लभ के रूप में कृष्ण को पाना चाहते हैं इसलिए अपनी मैया को कहा, सुखदेव गोस्वामी जी पक्षी के रूप में और ये प्राण बल्लभ के रूप में यदि वहां पर लीला में उपस्थित हैं, बतलाओ तो इनका कितना सौभाग्य। वो तो हम लोग जैसे मूल व्यक्तियों को कुछ उपदेश दिलाने के लिए, श्रीमद् भागवत को प्रकाश करने के लिए अपने को छिपा करके और किस प्रकार से कर, इसलिए परीक्षित महाराज जी को कम न समझा जाए। परीक्षित महाराज, अर्जुन ये सब बद्ध जीव नहीं है, ये सब मुक्त जीव हैं, कृष्ण के परिकर हैं, नित्य परिकर हैं। इसलिए जितने हमारे श्रोता लोग हैं वो भी बंदरी हैं। हमारे गुरु जी के गुरु जी कहा करते थे, जितना ये श्रोता है मैं सबको नमस्कार करता हूं, क्यों, जिनके देखने से ही कृष्ण नाम मुझे आता है वो हमारे प्रणम और गुरु जैसे हैं। गुरु कभी शिष्य नहीं करता, उनका ये कहना। गुरु क्या करता है कि जिसको पैर ऊपर में हाथ रख देता है वो गुरु बन जाता है, जगत का गुरु बन जाता है, वो शिष्य ही नहीं रहता। आजकल करके सामाजिक कुछ लोग ऐसे हैं जो शिष्य को मंत्र तो देते हैं किंतु उनका हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। ये क्या हुआ, जब बेटा बना लिया बेटी बना लिया उसको कृष्ण नाम दे दिया तो अपने समकक्ष की तो बात क्या रहे, उनके हाथ का पानी नहीं चलेगा, उनके हाथ का रसोई नहीं चलेगा, तो फिर वो क्या हुआ। किंतु हम लोगों के प्रभुपाद, हम लोगों की धारा में परंपरा में प्रभुपाद जी ने और सब लोगों ने गुरु बनाया सबको, जगत के गुरु होकर के सब जगत के चार गुरु हैया तारो देव, ऐसा उनको दे दिया। इसलिए हम लोग, मैं सब श्रोताओं की भी वंदना करता हूं, ये सबके बड़े प्रिय हैं। आज एकादशी है, अभी ये प्रसंग आएगा, मैं संक्षेप में दो चार शब्दों में बतलाता हूं। एकादशी का महात्मा बड़ा है, न बड़े बड़े योगी ऋषि ब्राह्मण इत्यादि का महात्मा भी है। एक ऐसा संदेह हुआ लोगों, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि हैं जो अपने अभिसंपा से सबको जला सकते हैं या जिसको जो हो वो सब कुछ देने वाले हैं, ऐसे ऋषि थे दुर्वासा, और एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति थे महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी एकादशी का, जिस एकादशी में द्वादशी मिली हुई होती उस महाद्वादशी का वो अवश्य करते। एकादशी को भी छोड़ करके यदि द्वादशी उसमें मिल जाए और द्वादशी उसमें हो जाए तो वो सब एकादशियों से द्वादशी का महात्मा अधिक होता है। वैष्णव लोग शुद्धा एकादशी भी छोड़ करके वो द्वादशी मिली जो है वो उसको करते। वो ऐसा हुआ कि वो एक वर्ष के लिए एकादशी का संकल्प लेकर के बैठे, अपने राज्य को छोड़ करके मथुरा में अपनी छावनी बना ली। अम्बरीश शिला जहां पर है वहीं पर वो रहते थे, और एक वर्ष में ब्रज में रह करके एकादशी करूंगा, ऐसी उन्होंने संकल्प कर लिया। एकादशी उन्होंने किया, द्वादशी का ये योग था, और उसी समय में दूसरे दिन, पहले एकादशी तो घट गई है ना, एकादशी चली गई द्वादशी में किया, अब त्रयोदशी आने वाली है, इसलिए त्रयोदशी के पहले ही द्वादशी में ही उसका पारण करना है, और वो भी पहले चरण में नहीं दूसरे चरण में करना है, नहीं तो एकादशी व्रत समाप्त हो जाएगा। ऐसी समय में दुर्वासा आ गए, उन्होंने देख करके कहा आज बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आप द्वादशी के दिन आए हैं, अब यहीं पर पारण कर लेंगे। उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं जरा जमुना पाती में जमुना में स्नान कराऊं। जमुना में स्नान करने गए और जानबूझ करके देरी लगा दी। सूर्योदय के बाद में 15 मिनट के बाद ही में द्वादशी का पारण था, अन्यथा पारण वो समाप्त हो जाएगा। मैं 15 मिनट में आप स्नान करके आ जाइए। उन्होंने निर्जला उपवास किया था, जानबूझ करके देरी करके थोड़ी देर के बाद में आया। इन्होंने सोचा, ब्राह्मणों से उन्होंने पूछा अब क्या करना, क्या ये 15 मिनट के अंदर में हमको कुछ ठाकुर जी की पूजा करके और कुछ लेना है, और यदि नहीं लेता हूं तो एकादशी व्रत नष्ट हो जाता है, और उधर में जोगी महा तपस्वी हैं, यदि कुछ असुविधा त्रुटि मेरी हो गई तो मुझे जला करके भस्म भी कर सकते हैं, या जैसा तैसा हम अभी संपात कर देंगे। अब क्या करना चाहिए, एकादशी की रक्षा करनी चाहिए न ब्राह्मण सम्मान की और जोगी सम्मान की को रक्षा करना चाहिए। सब लोगों ने कहा आपने निर्जला उपवास किया है, इसलिए ठाकुर जी का चरणामृत जल है उसको आप ग्रहण कर लीजिए। पारण भी नहीं होगा, पारण हो भी जाएगा, खाना भी नहीं हुआ, खाना हो भी गया, इसलिए आप इसको कर लीजिए, आपका व्रत रह जाएगा, फिर आएंगे उनको खिला पिला करके आप ग्रहण कर। इन्होंने जलपान कर लिया, चरणामृत को ले। थोड़ी देर के बाद में दुर्वासा आए, बोले तुम बड़ा भारी ढकोसला है, धोनी है, हमको निमंत्रण दे करके, और तुम पहले ही पारण कर लिया, तुम हमें नहीं जानते कि मैं कहता हूं। जटा उखाड़ा और कृत्या को उन्होंने स्मरण किया और जलती हुई आग उनके तरफ में जलाने के लिए से भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहा था। भक्तों की रक्षा सब करता, इस समय भी करता है, सब समय करता, इसलिए उसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन माने काटने का हथियार नहीं, सुदर्शन। सुदर्शन माने क्या, दिव्य दृष्टि देकर के उनका एकदम कल्याण सुधार देता है जीवन ही। इसका ये माननी जैसे काट दिया और खत्म कर दिया, हत्या कर दिया, ये तो सुदर्शन का अर्थ नहीं है। ये सुदर्शन भी उन पर कैसे कृपा करते हैं देखिए। सुदर्शन चले, कृत्या को तो समाप्त कर दिया। अब दुर्वासा के तरफ में बढ़े, दुर्वासा भागे, समस्त पृथ्वी में भागे, ब्रह्मलोक यहां तक कि पाताल लोक सब लेकर के भ्रमण करते 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 कोई आश्रय नहीं दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में गए, इन्होंने किसी ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद में फिर वो ब्रह्मलोक में पहुंचे, घूमते घूमते उनको एक वर्ष लग गया, और ये एक पर पकड़े अम्बरीश महाराज, ये ब्राह्मण का कोई अहित न हो, हे सुदर्शन जी आप इन पर कृपा करें। और ये भाग रहे हैं, भक्तों की ऐसी महिमा, कृत्या जलाने आई ये चुपचाप खड़े हैं छाती तान कर मृत्यु का आलिंगन करने के लिए, इनको तनिक भी भय नहीं हुआ। और उधर में जब चक्रसुदर्शन के पास में जाता तो वो भगते हैं, उनको मृत्यु का डर है, भक्तों का मृत्यु का डर नहीं, आज न कल तो मरना है, आत्मज्ञान है किंतु उनको नहीं, इसलिए भगे। प्रभु के पास में गए, नारायण के पास में, उन्होंने कहा यहां पर रहने से काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, पैर में कांटा यदि गड़ जाए तो सिर से नहीं निकलता, विष्णु पाप कहते हैं वैष्णवों को। अम्बरीश महाराज को तू साधारण गृहस्थ समझता है, वो तो संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करने वाले, भजन करने वाले हैं, तुमने उनके चरणों में अपराध किया है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूं, यदि क्षमा कराना है तो जाओ उन्हीं के पास में जाओ, महाराज के पास में जाओ। अब कोई उपाय नहीं दे करके थके हुए और सर्वस्व लूटे हुए व्यापारी की भांति फिर वहीं पर चले। वो तो पहले से हाथ जोड़ करके खड़े थे, चक्षु दर्शन की उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप भगवत स्वरूप हैं, इनकी रक्षा कर। उनकी प्रार्थना से वो शांत हो गए। अब इनके चरणों में वो गिरने जा रहे हैं, उनके चरणों में गिर करने, हमारा आपके चरणों में अपराध हुआ। वो कहते हैं कि हमारा उनके चरणों में आपके चरणों में अपराध हुआ। कहते हैं अंत में, ओहो अनंत दासाना, अरे क्या कर रहा है सर, अहो अनंत दासानाम मध्य में, आज हमारा कितना सौभाग्य, आज भगवान के भक्तों की महिमा आज हमारे सामने प्रकट हुई। हमने इनको जलाने की चेष्टा की, जलाना तो दूर रहा, चक्र हमारे ऊपर में टूट गया, और ये क्षमा की मूर्ति उनसे हमारी रक्षा होने की और हमारा कल्याण चाहते हैं। कभी भी इनको क्रोध नहीं होता, कभी देश की भावना नहीं होती, जगत पर कल्याण करने की भावना रहती है। फिर उनको शांत किया, फिर उनकी पूजा की, दुर्वासा को खिलाया, और इसके बाद में तब अपने लोगों के साथ में भोज करके खाया। आज एकादशी का दिन है, कल ही हमने बतलाया था, इसलिए एकादशी सब लोगों का कर्तव्य है। एकादशी की यदि हम ये सब नियम पालन करें, कोई भी व्रत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्रत, न सोम न मंगल न बुध न बृहस्पति न शुक्र न शनि न रवि न सोमो अपि अमावस्या और न गणेश चतुर्थी सकट इत्यादि जितने भी हैं, वो भक्ति देवी के चरण के अंगुली की जो प्रभा है उसमें उसकी ये आरती उतारते हैं। वो लोग जो कोटि कोटि जन्मों में आराधना करने से देंगे, भगवान की कृपा, भक्ति जी की कृपा कटाक्ष होने से ही अपने आप सब हो जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत सबसे बढ़कर कृष्ण को देने वाली। चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में है। पंडित कहते हैं कि एकादशी को हम लोगों ने जगन्नाथ जी के यहां उल्टा लटका दिया है, पैर ऊपर बांध दिया और मुख नीचे एकादशी का। कहते हैं किस लिए, पान की बातें हैं ना, अन्न संत खाते हैं और उस दिन भी अन्न खाते हैं, इसलिए वहां के पंडित ऐसा कहते हैं, एकादशी नहीं करना चाहिए। विशेष करके सधवा लड़कियों को और सधवा स्त्रियों को तो करना ही नहीं चाहिए, ये सब झूठ कपोल कल्पित बात है, शास्त्र बहिर्भूत बात, उनकी बातों में कभी विश्वास न करें। चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान उनको दिया 56 प्रकार के व्यंजन और पकवान इत्यादि के साथ में उनके सामने में उपस्थित कर दिया एकादशी के दिन महाप्रसाद। महाप्रभु जी महाप्रसाद को सम्मान करना जानते हैं, यदि न खाएं तो अपमान हो जाएगा, यदि खाते हैं तो एकादशी चली जाएगी। ब्राह्मण भी वैसे ही बड़े धुरंधर थे, उन लोगों ने महाप्रभु जी को खिलाने के लिए, जो महाप्रभु यदि एकादशी को खा लेते हैं तो सभी लोग खाने लगेंगे, तब तो हम लोगों को बहुत आराम होगा, एकादशी नहीं करने का कष्ट नहीं पड़ेगा। महाप्रभु जी ने बीच में प्रसाद रख दिया, सत्संग प्रणाम करके 1008 प्रणाम करने लगे, उनके भक्त लोग भी हजारों प्रणाम करते लगे। प्रणाम करते करते घंटों चला गया, इसके बाद में 100 स्तुति, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वास नहीं बजायते इत्यादि सब श्लोक पढ़ने लगे। बाकी अन्न भी हो, ठाकुर जी का प्रसाद कुकुर ने उसको खा दिया, यदि वो सड़ा गला भी है, कहीं बाहर देश से लाया गया है, बासी भी है, जैसा तैसा है, कुकुर ने भी उसे उठा लिया उसे छोड़ दिया, कैसा भी हो, सूखा बासी ताजी कैसा भी हो, महाप्रसाद सप्त में अप्राकृत तो महाप्रसाद भगवत स्वरूप है, भगवान में नाम में विग्रह में ये सब जो कम सौभाग्य वाले लोग हैं उनकी श्रद्धा नहीं होती। गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव, ब्रह्मणी वैष्णव, भगवान में, वैष्णव में, हरि नाम में, धाम में साधारण लोगों की बुद्धि नहीं होती है। ने? ये सुकृति संपन्न यदि व्यक्ति हो तब तो इनको भगवत स्वरूप का ये है। ये भागवत कागज की पोथी नहीं है, ये स्वयं भगवान है। अभी बतलाया गया, फिर बतलाया जाएगा ये सब चीजें चैतन्य महाप्रभु जी। फिर सौ स्तुति करते 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 लग गया घंटों, और इसके बाद में परिक्रमा करके कीर्तन करने लगे भगवान महिमा की, और करते करते सारी रात बीत गई। 5 बज गया जब सवेरे, बस कीर्तन समाप्त करके सब लोग कीर्तन करते 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 समुद्र में गए, समुद्र में स्नान किया और जगन्नाथ जी का दर्शन करके, और आकर के सबको बैठा दिया, अपने भी प्रसाद पाया दूसरों को। पंडे लोग देख करके चकित हो गए। भगवान की बुद्धि कुछ 2 अंगुल अधिक होती है लोगों से, इसलिए एकादशी का व्रत आप लोग किसी भी स्थिति में मत छोड़ें। यदि एकादशी का व्रत किया, आपका सब कुछ करना हो गया जीवन में, भक्ति भी हो जाएगी, वैष्णव का संग हो जाएगा, अंत में भगवत धाम में हो जाएगा। इसलिए एकादशी का ऐसा महत्व वर्णन किया। अब यहाँ से हम लोग हरि कथा हम लोग आरंभ करेंगे। आप लोग खूब श्रद्धा के साथ में आप लोग कृष्ण को चिढ़ाती है। वो चिढ़ा रही जो आप काले कैसे भर गए, आप काले कैसे बने। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो कृष्ण तनिक भी नहीं सुनते, आंख भी उधर नहीं फेरते, और गोपियां उनको चिढ़ाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बोलती हैं, उनको बड़ा आनंद लगता है। तो गोपियों ने पूछा कि आप काले कैसे हो गए। तो कृष्ण ने कहा कि तू ही बतलाओ कि कृष्ण कैसे काल, मैं कैसे काला बन गया। और ब्रज की इस विषय को जो जानने वाली है उनकी प्रतिनिधि मथुरा वाली अभी ये सब सुनाएंगी आपको। और तब तक 5
ज्ञान शलाकया चक्षुरुन निमितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेमाप्तदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुते तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तम्मे तया सर्वो भिनिन्तु तं तोस्मि।
भगवान की कृपा से हम लोगों का श्रीमद् भागवत पारायण निर्विघ्न चल रहा है। आज हम लोगों का तृतीय स्कंद में हम लोग उपस्थित हुए, और अंत में देवहूति कपिल संवाद में पहुंचे। कपिल जी भगवत अवतार है, सत्यावेश अवतार, देती देवती जी भी भक्ति स्वरूपणी है। देवहूति जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए, संसारी जीवों के लिए प्रहलाद मुन से, कपिल देव जी से बहुत से प्रश्न पूछे हैं, जिसके उत्तर में उन्होंने श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन किया, सतांग प्रसंगां मम वीर्य संविदौ भवंत रितकरण रसायन तथा तज्जोसनात आसु अपवर्त वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति। बतला रहे हैं भक्ति ही जीवों के लिए मूल प्रयोजन है, किंतु यह भक्ति होगी कैसे? पूर्व जन्म के संस्कार से हो, वैष्णव के संग से हो, भक्ति स्तु भगवत संगेन परिजायत, सत्संग से भक्ति मिलती है, उसी का भी पीछे श्लोक में बतलाया गया, सतांग प्रसंगाम विद्य संविद। कोई कुछ न करे और भक्तों का संग हो जाए और उनके संग में भगवान की लीला कथाओं का शुद्ध रूप में वर्णन और श्रवण हो तो जीव का निश्चित कल्याण हो। इसलिए भक्ति राज्य में सबसे पहले साधु संग होना आवश्यक। संसार में भ्रमण करते हुए बड़े सौभाग्य से जब संसार के निवृत्ति का कारण होता उपस्थित होता है तो सबसे पहले उसका साधु संग, जब साधु संग होगा समझ लो कि अब हमारे संसार का अंत होने वाला है। कैसे संग होता है हम तो करना नहीं जानते, किंतु वो बड़े दयालु होते हैं, किसी न किसी प्रकार से छल से बहाना से वो संग करा लेते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, किंतु बेचारा गृह में भी लोगों के घर में स्वयं उपस्थित हो जाते, कोई काम नहीं, और उनसे संपर्क लगा कर पानी थोड़ा सा मांग लिया, पी लिया, कोई न कुछ कर दिया। एक साधु तो इतने दयालु हैं, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और ढूंढ ढूंढ करके ऐसे लोगों के पास में जाते हैं जिनको भक्ति नहीं, विचार करके जाते हैं। एक बुढ़िया के यहाँ गए, बुढ़िया से कुछ मांगा, उसने इनको गाली गलौज दी, जैसे इन मुंहों को और स्थान नहीं जब मेरे पास आते हैं मांगने के लिए, और रोज गाली सुना देती और रोज उसी के घर में जाती, तो ये ऐसे नहीं मानेगा। तो वो बुढ़िया अपना आंगन लिप रही थी और इतने में पहुंचे, राधे श्याम किया तो लिप रही थी, पोतना उठाया, पोतना ही उनके मुख में मारा। पोतना समझते हैं ना, लिपने का घर पहले लिपता पोतता था गोबर इत्यादि के साथ, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसी कपड़े से भीगे हुए पुराने और मिट्टी फिट्टी लगे उसी से मारा। तुमने क्या आज तुम्हारा मंगल हो, तुमने कुछ दिया तो बस उसी को ले लिए, और ले करके जमुना जी ने मलबल कर धोया खूब अच्छी तरह से, और धो करके घी में उसे डुबो दिया, उसकी बत्ती बनाए और उसी से अपने ठाकुर जी को अर्चन इत्यादि किया। अब उसका ये फल हुआ कि बुढ़िया का मन धीरे धीरे सुखी से होकर के, फिर साधुओं का संग होकर के, फिर धीरे धीरे कथा सुनने में रुचि हो गई और अंत में भगवान। इसलिए कैसे वो दयालु हैं। बहुत विधा भागवत आर्थित थी भूता स्वयं प्रभु इत्यादि में पहले हम लोगों ने वर्णन किया। जब साधुओं का संग होता है तो साधु लोग गुरु की महिमा बतलाते हैं। संसार में माता पिता भी बड़े दयालु हैं, उनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, किंतु फिर भी उनसे भी संत लोग और दयालु होते हैं। माता पिता एक जन्म की बात करते हैं और उनमें भी यदि कुछ स्वार्थ का कुछ गड़बड़ हो जाए ना, विरोध हो जाए तो नहीं कृपा करें। किंतु साधु पुरुष जो हैं वो गुरु की महिमा बतलाते हैं कि वो कोटि कोटि जन्मों के लिए उसका संपर्क भगवान से कर देते हैं, एक जन्म के लिए नहीं। अहे चूंकि दयालु होते हैं, माता पिता से पुत्र का या संतान का संबंध होता है, दूसरों पर तो वो कृपा नहीं करते, अपने संतान से ही सब करते हैं। विशेष रूप से इनका सब प्राणियों के ऊपर में संभाव से इनकी कृपा होती है। गुरु किसी न किसी रूप में उसे भगवान से संपर्क कर देता है, इसलिए संत लोग गुरु की महिमा बतलाकर बतलाते हैं कि बिना गुरु के बिन गुरु भवन धि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, बिरंची ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई हो, बिना गुरु के भवन धि को पार करके भक्ति कभी नहीं लाभ। श्रीमद् भागवत इत्यादि में भी ऐसे ही बतलाया गया, गुरु के लक्षण भी बतलाए गए, समस्त शास्त्रों में पारंगत है। शब्द ब्रह्म में और साथ में रस ब्रह्म में भी पारंगत हो। कृष्ण ही रस ब्रह्म भी है, शब्द ब्रह्म भी है, उसमें पारंगत। रस ब्रह्म के लिए फिर श्रीमती जी का आश्रय लेना पड़ेगा, तब वो रस ब्रह्म होगा, केवल कृष्ण के आश्रय लेने से नहीं होगा। और कृष्ण कहने से श्री कृष्ण कहने से श्री राधा जी अपने आप आ जाती है, इसलिए इनमें पारंगत हो, अनुभूति संपन्न हो। यदि समस्त शास्त्रों को जानते हैं किंतु अनुभूति पर ब्रह्म की नहीं है, वो गुरु होने योग्य नहीं है, ऐसे गुरु से कुछ भी लाभ नहीं है। वेद शास्त्र श्रीमद् भागवत इत्यादि सब उनको याद है, जहां से कहो वहां से कह देंगे, किंतु अनुभूति नहीं है, गुरु होने योग्य नहीं है, इसलिए अनुभूति होना जरूरी है। और साथ साथ में जब उनको अनुभूति है और भगवान के तरफ में प्रीति है, अपने आप संसार के प्रति अनासक्ति वैराग्य हो जाएगा। ये तीन चीजें अवश्यंभावी हैं, एक साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए गुरु के ये प्रधान लक्षण बतलाए गए। यदि समस्त शास्त्रों में पारंगत भी हो, ब्राह्मण भी हो, सब प्रकार से हो, अनुभूति नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं। और यदि अनुभूति हुई तो जरूर वैराग्य उसमें होगा ही, इसलिए गुरु के ये सब लक्षण बतलाए गए। संतों के द्वारा ही गुरु लक्षण इत्यादि सब मालूम होते हैं और कैसे भव सागर पार करेंगे ये सब भी मालूम होते हैं, इसलिए इस श्लोक में बतलाया गया। सतांग प्रसंगम अविर्य संविदौ भवन्ते रित कारण रसायनः कथा। कोई कुछ भी ना करे, साधु संग में बैठ गया, वहां पर भगवान की विद्यवती बड़ी प्रभावशाली कथाएं होती रहती हैं, बहुत अद्भुत कथाएं होती हैं। उन कथाओं का श्रवण करने से साथ ही साथ भगवान में पहले रुचि होगी, पहले साधन भक्ति है, रुचि से फिर साधन भक्ति आएगी, साधन भक्ति से फिर भाव भक्ति। वो साधन नहीं, उसको साधन भक्ति भाव भक्ति को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ऊपर से हृदय में स्फूर्ति प्राप्ति होती है, वो इस जगत की कोई चीज साधना के द्वारा वो मिलने वाली नहीं है। साधन उसको केवल प्रकाश कर देते हैं मात्र, और फिर भाव भक्ति के होने पर अपने आप प्रेम उसके हृदय में उपस्थित हो जाता है, उसका क्रम यही है। श्रीमद् भागवत में इसमें दिखलाया गया, देवहूति जी एक साधक, कपिलदेव जी उनके पुत्र होने पर भी गुरु हैं, उन्होंने गुरु के रूप में ही भगवान के रूप में उनको ग्रहण किया, पुत्र के रूप में नहीं। पहले पुत्र संबंध तो है किंतु उन पर पुत्र की भावना न रख करके उनमें गुरु भावना हुई। और तब उनसे उन्होंने जो प्रश्न किए उसका समाधान किया और उनको भक्ति में प्रतिष्ठित की। बाद में अभी आएगा, आज ही के प्रसंग में आएगा, यदि गुरु में निष्ठा नहीं है तो उसको लोक और परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। भगवान का मिलना तो बहुत दूर की बात है, यदि लौकिक भी गुरु है उसमें परमात्मा में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए, नहीं रखने से उधर में बढ़ नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कर्मी भी लोग भी, साधारण लोग भी अपने गुरु में भगवत बुद्धि रखे, नहीं तो उसके उपदेशों को पालन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ में कपिल देव जी को केवल गुरु ही नहीं भगवान से अभिन्न उनको भगवान माना, और मान करके तब उनके उपदेशों को बिना किसी शंका बिना किसी संदेह के अपने हृदय में उसको रख। प्रश्न जो किया वो संदेह के लिए नहीं, समझने के लिए किया। इसीलिए साधक लोग परिप्रश्न करते हैं, प्रश्न नहीं करते। लोगों को तंग करने के लिए हमारा प्रश्नों का उत्तर देने की नहीं दे सकते, ये सब मापने के लिए नहीं वो करते, वो तो परिप्रश्न करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में, कुछ और जानने के लिए करते हैं, दृढ़ता के लिए वो करते हैं। इस तरह से इनके संवाद में देखते हैं और पृथ्वी इसी के बाद में देखेंगे सती और शंकर जी का। सती जी दक्ष प्रजापति की लड़की, शंकर जी से ब्याह के बाद में दोनों कैलाश में रहने लगे, हरि कथा भी बीच में चलती रहती थी। इसी बीच में त्रेता युग आया। त्रेता युग आने पर रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता को लेकर के वन के लिए निकले लीला करते हुए, और ऐसी करुणा मूलक लीला की पशु पक्षी भी द्रवित हो जाए। कृष्ण की लीला सुन करके कोई रोए चाहे ना रोए, किंतु राम की अत्यंत कारुणिक लीलाओं को सुन करके प्रत्येक व्यक्ति रो ही देगा, भले ही दो मिनट के बाद में हंस दे तो दूसरी बात रहे। कृष्ण की लीला में और राम लीला में यही वैशिष्ट है। कृष्ण लीला में सभी लोग नहीं रोएंगे, रोएंगे कौन? जिनको भावावस्था हो गई है वो लोग रोएंगे, और उनके आंखों के पलकों की आंसू कभी नहीं सूखेगा, दिन रात सर रहेगा, रोते रहेंगे, विरह में तड़प करेंगे, वो फिर बंद नहीं होगा। और विषयी से विषयी भी व्यक्ति हो, राम की लीलाओं का वनगमन, सीता का परित्याग, ये सब जो लीलाएं हैं सुन करके करुण होकर के वो रोने लग जाएगा। रामचंद्र जी ऐसे करुण लीला कर वन में दंडकारण्य में रावण ने दुष्ट आकर के सीता जी को चुरा दिया। अब रामचंद्र जी का विरह देखिए, एकदम रोने लगे जैसे कामी पुरुष अपने स्त्री के लिए, जो कामांध अपनी स्त्री के लिए एकदम मोहग्रस्त है वो जैसा रोता है, बिलख बिलख करके रोने लगे। रोते 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 ऐसी उनकी दशा हुई कि पशुओं से पक्षियों से मृगों से पूछने लगे। सीता को कहीं देखा? हिरणों को देखते हैं कहते हैं सीता को देखा, गोपियां जैसे वृक्षों से पूछ रही है, कृष्ण को देखा हमारे श्याम सुंदर को देखा, रामचंद्र जी उल्टा कर रहे हैं, हमारी प्रिया जी को कहीं देखा बावरे बन गए, उसी समय घोरा लक्ष्मण जी उनके दुख में बड़े दुखी हो गए, आश्वासन देने की चेष्टा करते हैं, नहीं पाते। दोनों भाई रो रहे हैं कंदरों में, इधर में उधर में, नदियों के तट पर, जहां कहीं भी छिपने का स्थान है उसमें वो देख रहे हैं, खोज रहे हैं। शिव जी को इधर कैलाश में क्या हुई, अरे हमारे प्रभु लीला के लिए अवतरित हुए हैं, थोड़ी सी उनकी लीला का स्वादन करके उनको प्रणाम तो कराऊं, किंतु उनकी लीला में कोई बाधा न हो इसलिए उनके साथ में सती के साथ में वहां पर उपस्थित हुए, और उपस्थित होकर के रामचंद्र जी को देख करके आंखों से आंसू झरने लगे प्रेम के, और उस अवस्था में देखा जबकि आंख रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हाथीते हाथीते कर रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, उसी समय में देखा, देख करके कुछ हंस दिए शंकर जी, ऐसी अद्भुत लीला, इसको तो देख करके कौन नहीं मोहित हो जाए। सती जी ने कहा जो प्रिय आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, हमने आपके मुख से भगवान ब्रह्मराम की बातें सुनी है, वो चराचर के सृष्टा हैं, वो समस्त देवताओं के भी आराध्य हैं, मोह काम तो उनमें होता नहीं, आप्त काम आप्ताराम इत्यादि हैं, उनको देख करके माया भी मोहित हो जाए, और वो उनको प्रणाम आपने किया, ये दशरथ नंदन ये जो राम रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं इनको आपने प्रणाम किया। उन्होंने कहा इसकी बुद्धि कुछ गड़बड़ हो गई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा प्रिय तुम, मैं तो वही पर ब्रह्म राम जो है सर्वव्यापी हैं, सब निरमण करने वाले राम हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, वो और दोनों ये दो नहीं हैं, एक ही हैं, शंका मत करो, जैसे मैं प्रणाम करता हूं उसे प्रणाम करके कोई भी शंका मत करना। सती जी ने देखा इस व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि मेरी स्त्री को कौन हर ले गया, और ऐसा कामी जो स्त्री के लिए बर्बस होकर के और रो रहा है, समझाने पर भी नहीं समझता है, ये परब्रह्म होते तो उनको पता होता है ये सीता जी कहां है, और इनकी शक्ति से इनको हर करके कौन ले जाता, इसलिए ये तो किसी भी हालत में ब्रह्म नहीं हो सकता, और शंकर जी इसको प्रणाम कर रहे हैं, इधर बतला रहे हैं, मेरी समझ में ठीक नहीं आ रहा। उन्होंने फिर पूछा, शंकर ने कहा मैं अपने आराध्य देव को ही प्रणाम कर रहा हूं। उन्होंने सोचा जी इसका कुछ खराब दिन आने को है, गुरु में शंका हो संदेहात्मा विनश्यति, संदेह जिसको हो जाए गुरु में तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने भर सत्यता की किंतु वो मानी नहीं। शंकर जी ने कहा मैं यहां पर खड़ा हूं, तुमको यदि किसी विषय में इनके लिए शंका है ये पर ब्रह्म है कि मनुष्य है, तो आप भले ही जाकर के इनकी परीक्षा ले सकते, मैं यहीं पर खड़ा हूं। बस वो खड़े रह गए वट वृक्ष की छाया में वहीं पर, और भगवत स्मरण करने लगे। पर इसका तो अब दुर्दिन आया, दुर्बुद्धि हुई, मेरे बातों में भी इसका समाधान नहीं हुआ। वो चली गई, सोचा जब मैं कैसे इनकी परीक्षा लू, सोचा अभी सीता जी के विरह में ये व्यथित हैं, मैं सीता जी का क्यों नहीं रूप बना लू, ऐ बेटी सीता जी का रूप बना लिया, जैसे सीता जी थी वैसे ही, और बना करके उनके सामने में गई, जहां पर राम हासीते हासीते कर रहे हैं उनके सामने गई। उन्होंने उनके तरफ में देखा नहीं, राम ने दूसरी तरफ में देखने लगे चले गए। फिर वो उधर से फिर उनके सामने आए, फिर भी नहीं देखा तो फिर उनके सामने आए, ये हमको देख नहीं रहे इसलिए ऐसा हो रहा। जब दो तीन बार ऐसा किया तो रामचंद्र जी को कुछ दया आ गई, झट उनके तरफ में मुड़े राम, बोले माता जी आप यहां पर कैसे ठहर गई, शंकर तो आगे बढ़ गए, चले गए, आप किसकी प्रतीक्षा में यहाँ पर खड़ी? उनका माथा ठंडा, अरे ये कैसे जान लिया? अभी रो रहा है, सीते सीते कर रहा है, और मैंने ठीक सीता को अभिकल रूप बनाया, और ये हमको माता जी का करके संबोधन कर रहा है। तो भाई ये तो ठीक मालूम होता है कि वही शंकर जी झूठ नहीं बोलेंगे, शंका की कोई बात नहीं। आराम ने देखा, अभी पूर्ण तरह से इसकी शंका नहीं मिटी, पूर्ण तरह से इसकी शंका मिटनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ऐसे प्रणाम किया यानी आंखें बंद की और आंख खोली तो देखा जी सीता जी राम और लक्ष्मण तीनों हैं, तीनों जिधर वो दृष्टि कर रही है, जिधर देख रही है उधर ही देखा राम लक्ष्मण और सीता जी, चारों साथ में देख रही। ये सीता कहां से आ गई? वो तो चोरी चली गई थी, प्रभाव दिखला है। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किए, उनको प्रणाम करने के बाद में रामचंद्र जी ने और लीला उसने कर दी, सीता जी को हटा दिया। और फिर पहले जैसे रो रहे थे ना, हाँ सीते तू कहाँ है, और सबसे पूछ रहे हैं, ऐसे आंखों की लड़ी फिर लग गई और विलाप करते हुए आगे बढ़े। अब सती कह रही हैं, अरे ये तो सचमुच में ये परब्रह्म है, अब मुझको पता चला। बस उनको नमस्कार करके अब सुख चाहती हुई अपना रूप त्याग करके बन गई सती और शंकर जी के पास में चली। जब शंकर के पास में पहुंची तो शंकर जी ने पूछा, परीक्षा ले लिया वो ब्रह्म है कि नहीं है, ये बात तुमको अब समाधान हुआ कि नहीं? तो ये समाधान हो गया, आप जो कहते हैं वो कभी उसमें शंका की कोई भी बात नहीं है, इसलिए मैं समझ गई कि आप ठीक कह रहे हैं। परीक्षा ली? क्या परीक्षा ली नाथ? मैं क्या परीक्षा ली? मैंने कोई भी परीक्षा नहीं, एक तो शंका किया और दूसरी बात की झूठ बोल दिया। झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक झूठ को बतलाने के लिए बचाने के लिए अब 10-20 फिर झूठ बोलना पड़ता है, और उस झूठ को छिपाने के लिए सारा जीवन झूठामय हो जाता है। इसलिए जैसी बातें हैं ठीक गुरु के निकट बोल दो। अंततः गुरु एक ऐसा होना चाहिए जो अपना हृदय फाड़ करके उसके सामने हम रख दें और वो पूरा सब जान ले। सबसे छिपाओ जो कुछ करो, गुरु से अपनी बात कभी मत छिपाओ और उनके ऊपर में कभी भी किसी प्रकार की शंका मत करो। वो अहेतु की कृपा में है, सब पर कृपा करना। अब जब शंकर जी ने देखा योग की दृष्टि से, अरे इसने तो मेरी उपास्या देवी सीता जी का रूप बनाया और बना करके उनके सामने गई, रामचंद्र जी ने उनको माता के रूप में पहचान लिया। अब ये आई है, अब शंका यथासन हुई। उन्होंने कहा, मनी मन ने संकल्प किया, अब इस देवी के साथ में हमारा भार्या और पति का संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने हमारी माता जी का स्वरूप बनाया है, इसलिए अब हमारी आराध्या देवी के रूप में हमारा इनके साथ में संबंध रहेगा, अब तो संबंध हो ही नहीं सकता। संकल्प कर लिया, अब पत्नी और पति का संबंध अब आज से खत्म हुआ। और ये कह करके बिना किसी बात किए हुए आगे बढ़ गए। अब ये सोच रही हैं, इतने में आकाश की वाणी हुई, शंकर जी आपके अतिरिक्त ऐसा कोई संकल्प जगत में करने वाला नहीं है। सती ने पूछा, जी आपने क्या क्या संकल्प किया? वो कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अब वो सोचती आश्रम में आई। उन्होंने दाहिने तरफ, पहले बाएं तरफ बैठाते थे, अब बाएं तरफ नहीं बैठाया, सामने तरफ में बैठाया, जैसे गुरु के सामने शिष्य होता है। भगवान को बाएं से प्रणाम करो, किंतु गुरु को सामने से प्रणाम करो, सामने बैठो, उनसे प्रश्न करो, परिप्रश्न करो। अब हरि कथा तो हो रही, किंतु सीता सती का मन सब समय उदास रहा और बाएं के बदले सामने से बैठा है। अब वो समझ गई कि अब हमको पत्नी के रूप में अब ये ग्रहण नहीं कर रहे, परसों का जैसा शरीर का कोई भी अब जरूरत नहीं, जब इनकी मैं सेवा नहीं कर सकती और धीरे धीरे समाधि में मग्न हो गए, सब समय प्राय समाधि रहने लगे। अब उन्होंने संकल्प किया अब इस शरीर को छोड़ना ही है, इससे तो हमारा उनका संपर्क उस रूप में नहीं रहेगा। अंत में अपने पिता के यहाँ गई और कैसे शरीर को छोड़ा ये सब प्रसंग आएगा और आप लोग भी जानते होंगे। उस शरीर को छोड़ दिया, फिर हिमालय के यहाँ वो पुत्री के रूप में जन्मी, पार्वती के रूप में, और फिर शंकर जी से उनकी शादी हुई। फिर वो इसलिए खूब सावधान, इसीलिए सतन प्रसंग भवन तरित तथा सज्जोत्नात आशु अपवर्त। आशु माने शीघ्र। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में भी बतलाया गया तत्क्षणात् धर्म प्रज्ञित कैसो अत्र परमो निर्मस्तराणं सतं। उसमें भी बतलाया गया अंतिम चरण में भगवान की ये जो लीला कथाएं हैं भागवत, जिसका श्रवण करने से तत्क्षणात् भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कृति भी सुश्रु भी तत्क्षणात्, सुश्रु भी माने श्रद्धालु व्यक्ति, प्रीति के साथ भी श्रवण करने वाला हो तो वो भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम लोग भी गुरु के प्रति अपनी शुद्ध निष्ठा बनाए और उन्हीं के कृपा से हम लोग भागवत इत्यादि का श्रवण करके और वो सब चीजें हमारे हृदय में स्फूर्ति हो, यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करें। आप लोगों की भी वैसे ही रहे और प्रेम के साथ में श्रीमद् भागवत श्रवण करें, भगवान भी आप लोगों के हृदय में अवरुद्ध हों।